यशु बाब 24। फिर यशु ने इसराइल के तमाम कबीलों को सिक्किम शहर में जमा किया। उसने इसराइल के बुजुर्गों, सरदारों, काजियों और निगहबानों को बुलाया और वो मिलकर अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए। फिर यशु इसराइली कौम से मुखातब हुआ, रब इसराइल का खुदा फरमाता है, कदीम जमाने में तुम्हारे बाप दादा दरिया फिरात के पार बसते और दिगर माबूदों की पूजा करते थे। इब्राहिम और नहूर का बाप तारह भी वहां आबाद था, लेकिन मैं तुम्हारे बाप इब्राहिम को वहां से लेकर यहां लाया और उसे पूरे मुल्क कनान में से गुजरने दिया। मैंने उसे बहुत औलाद दी। मैंने उसे इसहाक दिया और इसहाक को याकूब और एसव, एसव को मैंने पहाड़ी इलाका साइर अता किया, लेकिन याकूब अपने बेटों के साथ मिस्र चला गया। बाद में मैंने मूसा और हारून को मिस्र भेज दिया और मुल्क पर बड़ी मुसीबतें नाजिल करके तुम्हें वहां से निकाल लाया। चलते चलते तुम्हारे बाप दादा बहर कुलजम पहुंच गए, लेकिन मिस्री अपने रथों और घुड़सवारों से उनका ताकुब करने लगे। तुम्हारे बाप दादा ने मदद के लिए रब को पुकारा और मैंने उनके और मिस्रियों के दरमियान अंधेरा पैदा कर दिया। मैं समुन्दर उन पर चढ़ाया और वो उसमें गर्क हो गए। तुम्हारे बाप दादा ने अपनी ही आंखों से देखा कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या कुछ किया। तुम बड़े अरसे तक रेगिस्तान में घूमते फिरते रहे। आखिरकार मैंने तुम्हें उन उमूरियों के मुल्क में पहुंचाया जो दरियाए यर्दन के मशरिक में आबाद थे। गो उन्होंने तुमसे जंग की, लेकिन मैंने उन्हें तुम्हारे साथ तुम्हारे हाथ में कर दिया। तुम्हारे आगे आगे चलकर मैंने उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया, इसलिए तुम उनके मुल्क पर कब्जा कर सके। मुआब के बादशाह बलक बिन सफूर ने भी इसराइल के साथ जंग छेड़ी। इस मकसद के तहत उसने बलाम बिन बाउर को बुलाया ताकि वो तुम पर लानत भेजे, लेकिन मैं बलाम की बात मानने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वो तुम्हें बरकत देने पर मजबूर हुआ। यूं मैंने तुम्हें उसके हाथ से महफूज रखा। फिर तुम दरिया यर्दन को पार करके यरीहो के पास पहुंच गए। इस शहर के बाशिंदे और उमूरी, फ्रिजी, कनानी, हित्ती, जिरजासी, हिवी और यबूसी तुम्हारे खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन मैंने उन्हें तुम्हारे कब्जे में कर दिया। मैंने तुम्हारे आगे जनबूर भेज दिए, जिन्होंने उमूरियों के दो बादशाहों को मुल्क से निकाल दिया। ये सब कुछ तुम्हारी अपनी तलवार और कमान से नहीं हुआ, बल्कि मेरे ही हाथ से। मैंने तुम्हें बीज बोने के लिए जमीन दी, जिसे तैयार करने के लिए तुम्हें मेहनत न करनी पड़ी। मैंने तुम्हें शहर दिए जो तुम्हें तामीर करने न पड़े। उनमें रहकर तुम अंगूर और जैतून के ऐसे बागों का फल खाते हो जो तुमने नहीं लगाए थे। यीशु ने बात जारी रखते हुए कहा, चुनांचे रब का खौफ माने और पूरी वफादारी के साथ उसकी खिदमत करें। उन बुतों को निकाल फेंके जिनकी पूजा आपके बाप दादा और दरियाए फिरात के पार और मिस्र में करते रहे। अब रब ही की खिदमत करें, लेकिन अगर रब की खिदमत करना आपको बुरा लगे तो आज ही फैसला करें कि किसकी खिदमत करेंगे, उन देवताओं की जिनकी पूजा आपके बाप दादा ने दरियाए फिरात के पार की, या उमोरियों के देवताओं की जिसके मुल्क में आप रह रहे हैं। लेकिन जहां तक मेरा और मेरे खानदान का ताल्लुक है, हम रब ही की खिदमत करेंगे। अवाम ने जवाब दिया, ऐसा कभी न हो कि हम रब को तर्क करके दिगर माबूदों की पूजा करें। रब हमारा खुदा ही हमारे बाप दादा को मिस्र की गुलामी से निकाल लाया और हमारी आंखों के सामने ऐसे अजीम निशान पेश किए। जब हमें बहुत कौमों में से गुजरना पड़ा तो उसी ने हर वक्त हमारी हिफाजत की, और रब ही ने हमारे आगे आगे चलकर इस मुल्क में आबाद उमूरियों और बाकी कौमों को निकाल दिया। ہم بھی اسی کی خدمت کریں گے کیونکہ وہی ہمارا خدا ہے۔ یہ سن کر یشو نے کہا، آپ رب کی خدمت کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ قدوس اور غیور خدا ہے، وہ آپ کی سرکشی اور گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ بے شک وہ آپ پر مہربانی کرتا رہا ہے، لیکن اگر آپ رب کو ترک کر کے اجنبی معبودوں کی پوجا کریں تو وہ آپ کے خلاف ہو، آپ پر بلائیں لائے اور آپ کو نیست و نابود کر دے گا۔ لیکن اسرائیلیوں نے اصرار کیا، جی نہیں، ہم رب کی خدمت کریں گے۔ پھر یشو نے کہا، آپ خود اس کے گواہ ہیں کہ آپ نے رب کی خدمت کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، ہم اس کے گواہ ہیں۔ یشو نے کہا، تو پھر اپنے درمیان موجود بتوں کو تباہ کر دیں اور اپنے دلوں کو رب اسرائیل کے خدا کے تابع رکھیں۔ عوام نے یشو سے کہا، ہم رب اپنے خدا کی خدمت کریں گے اور اسی کی سنیں گے۔ اس دن یشو نے اسرائیلیوں کے لیے رب سے عہد باندھا۔ وہاں سکم میں اس نے انہیں احکام اور قواعد دے کر اللہ کی شریعت کی کتاب میں درج کیے۔ پھر اس نے ایک بڑا پتھر لے کر اسے اس بلوت کے سائے میں کھڑا کیا جو رب کے مقدس کے پاس تھا۔ اس نے تمام لوگوں سے کہا، اس پتھر کو دیکھیں، یہ گواہ ہے کیونکہ اس نے سب کچھ سن لیا ہے جو رب نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اگر آپ کبھی اللہ کا انکار کریں تو یہ آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ پھر یشو نے اسرائیلیوں کو فارغ کر دیا اور ہر ایک اپنے اپنے قبائلی علاقے میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد رب کا خادم یشو بن نون فوت ہوا۔ اس کی عمر 110 سال تھی۔ اسے اس کی موروثی زمین میں دفنایا گیا، یعنی تمنت سیرہ میں، جو افرائیم کے پہاڑی علاقے میں جاسوس پہاڑ کے شمال میں ہے۔ جب تک یشو اور وہ بزرگ زندہ رہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تھا جو رب نے اسرائیل کے لیے کیا تھا، اس وقت تک اسرائیل رب کا وفادار رہا۔ مصر کو چھوڑتے وقت اسرائیل یوسف کی ہڈیاں اپنے ساتھ لائے تھے۔ اب انہوں نے انہیں سکم شہر کی اس زمین میں دفن کر دیا جو یعقوب نے سکم کے باپ حمور کی اولاد سے چاندی کے 100 سکوں کے بدلے خرید لی تھی۔ یہ زمین یوسف کی اولاد کی وراثت میں آ گئی تھی۔ الیعزر بن ہارون بھی فوت ہوا، اسے جیباؤ میں دفنایا گیا۔ افرائیم کے پہاڑی علاقے کا یہ شہر اس کے بیٹے فینحاس کو دیا گیا تھا۔